तो उसने कहा,
संशयी ने कि ठीक है आपने दोनों को जगह दे दी, पर यह तो हो सकता है कि उनमें से एक को आपने बढ़िया कमरा दिया हो। तो कौन सा बढ़िया कमरा दिया? वो स्वामी जी ने कहा, भाई देखो अब मैं तो इसमें भेद नहीं कर पा रहा हूं कि जो दो कमरे मैंने उन दो अतिथियों को दिए उनमें कौन सा बढ़िया है। मैं इतना बता देता हूं कि मैंने किसको कौन सा कमरा दिया है। अब उसके बाद फैसला करने का काम तुम्हारा कि तुम समझ लेना कि इन दोनों में कौन सा कमरा बढ़िया है। ठीक है, बताइए आपने किसको क्या कमरा दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, निर्गुण नयन निसगुण। कहे कि निर्गुण आए तो मैंने कहा कि आप तो हृदय में चले जाइए, और सगुण आए तो कहा कि आप तो नयनों में बस जाइए ताकि मैं आपके रूप का दर्शन करता रहूं, और उस निर्गुण को मैंने हृदय में स्थान दे दिया। अब तुम इस पर जल्पना कल्पना करते रहो कि हृदय श्रेष्ठ है अथवा नेत्र श्रेष्ठ है, इन दोनों को तो मैंने दे दिया। वो स्वामी जी मुस्कुरा करके पूछते हैं, अच्छा बताओ तो तुम हृदय को श्रेष्ठ मानते हो या नेत्रों को श्रेष्ठ मानते हो। यह तो कुछ बोल ही नहीं सका। संशयी क्या उत्तर दे, नेत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण है। रूप के दर्शन करने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है, भाव का अनुभव करने के लिए हृदय की आवश्यकता है। अब किसको वह बड़ा और छोटा कर सकता है, दोनों अपने आप में बड़े हैं। और इसलिए वह संशयी कोई उत्तर नहीं दे पाया। गोस्वामी जी हंसते हैं, नहीं कर सके ना भेद, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैंने दोनों को बुलाया, निर्गुण निराकार सगुण साकार, ये दोनों मेरे पास आए तो दोनों को मैंने स्थान दे दिया है। और देखो इन दोनों से भी बढ़कर एक तीसरा अतिथि है, उसको मैं इन दोनों से बढ़कर के मानता हूं, उसको मैंने सबसे बढ़िया स्थान दिया है। पूछा उसने, इन दोनों से बढ़कर के कौन तीसरा अतिथि हो सकता है, या तो निर्गुण निराकार या सगुण साकार, और इन दोनों से बढ़कर के कोई तीसरा अतिथि सोचो। गोस्वामी जी ने कहा, संशयी नहीं सोच पाया। गोस्वामी जी बोले कि मैं बताता हूं वह तीसरा अतिथि कौन है। निर्गुण नयन निसगुण रसना राम सुनाम, यह नाम, यह नाम तीसरा अतिथि है। और यह नाम कैसा अतिथि है, निर्गुण नयन निसगुण रसना राम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। कि इसको मैंने सबसे बढ़िया जगह दी है, रसना मैंने जगह दे दी उस नाम के लिए। नाम से मैंने कहा कि भाई तुम तो रसना में जाकर के बैठ जाओ। और किस लिए नाम को मैंने सबसे बढ़िया जगह क्यों दी, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है उसकी सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो मैंने इस नाम रत्न को स्वर्ण की मंजूषा में बंद कर दिया है। इसका ऊपर का भाग है नेत्र, नीचे का भाग है हृदय, इन दोनों के बीच में यह नाम रूपी धन सुरक्षित है, यह मेरा तीसरा अतिथि है, इसको मैंने सबसे बढ़िया स्थान दिया है। और गोस्वामी जी की यह मान्यता है कि ठीक है, श्री राम सगुण साकार है, श्री राम निर्गुण निराकार है, पर यह जो उनका राम नाम है, यह नाम दोनों से बढ़कर के है। वह ब्रह्म से भी बढ़कर के, वह राम से भी बढ़कर के, निर्गुण से भी बढ़कर के, और सगुण से भी बढ़कर के। और इसका भी बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं बालकांड में ही, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध्यनादियनुपा मोरे मत बड़ नाम दुहूते किए जही जुग निज बस निज भूते। ये जो नाम है दोनों से बढ़कर के, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनुपा, यह जो ब्रह्म है तो ब्रह्म के ये दोनों रूप निर्गुण और सगुण, वो तो क्या कहते हैं, अकथ अगाध अनादि अनूप। पर यह जो मेरा मत, तुलसी कह रहे हैं, मेरा मत यह है कि नाम इन दोनों से बड़ा है, और इस नाम ने क्या किया है, दोनों को अपने बल के द्वारा अपने वश में कर लिया है। उसने निर्गुण को भी वश में कर लिया, उसने सगुण को भी वश में कर लिया, जैसे श्री राम कृष्ण कहते थे ना, भक्तों ने पूछा महाराज ईश्वर निर्गुण निराकार है या सगुण साकार, वे कहते थे इतनी चिंता तुम क्यों करते हो, तुम नाम लेकर के पुकारो वह जैसा होगा वैसा आ जाएगा, तुम नाम लेकर के पुकारते तो हो नहीं, केवल इसी जल्पना में पड़े हो कि वह निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है, नाम लेकर के पुकारो तो सही, अगर वह निर्गुण निराकार होगा तो वैसे आ जाएगा, सगुण साकार होगा तो वैसे आ जाएगा, तो मानो उस नाम ने उन दोनों को वश में करके रखा है, निर्गुण और सगुण को। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं निर्गुण ते एही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। निर्गुण ते एही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, निर्गुण से यह जो राम नाम है वह बड़ा है और अपार उसका प्रभाव है, कहो नाम बड़ राम ते और वह राम से भी बड़ा है, तो यह मैं बताता हूं कि वह निर्गुण से कैसे बड़ा है और उसी प्रकार वह राम से कैसे बड़ा है। और फिर एक जगह भी और लिखते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरित सत कोटि मोह लिय महेश जिय जानी। उन्होंने कहा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, कि माने यह जो वरदायक हैं, वर के जो देने वाले हैं उनको भी यह नाम वरदान देता है, मानो कितना बड़ा यह नाम है कि वर देने वालों को भी वरदान देता है। और रामचरितमानस में या रामचरित्र में यह जो सौ कोटियों का यह जो रामचरित है उसमें से छान करके चुन करके उन्होंने भगवान शंकर ने एक ही मानो शब्द ले लिया और वह है राम नाम, यह उन्होंने कहा। और इस प्रकार वे नाम की महत्ता को हमारे समक्ष रखते हैं। एक प्रसंग आता है, अत्यंत रस भरा प्रसंग है, सेतु बनाया जा रहा था, बंदर और भालू ये ला रहे थे पाषाण खंड बड़े बड़े उठा करके, और उन पाषाण खंडों को समुद्र के जल में फेंकते थे। श्री राम देख करके अचंभित है कि यह पाषाण खंड डूबता नहीं है, तैर रहा है। उन्होंने कहा सुग्रीव से बंधु यह तो बड़ा चमत्कार दिखाई देता है, ये पाषाण खंड इतने बड़े बड़े परंतु समुद्र के जल में डालने पर भी डूबते नहीं हैं, यह कैसा चमत्कार है। तो कहा सुग्रीव ने महाराज यह बंदर और भालू का तो चमत्कार नहीं, यह तो आपके नाम का चमत्कार है, आपका नाम लेकर के वे डालते हैं पाषाण खंडों को सागर के जल में और ये पाषाण खंड तैरते हैं डूबते नहीं हैं, यह तो आपके नाम का प्रभाव आपके नाम का महात्म्य। प्रभु सोचने लगे मेरे नाम में यह प्रभाव कब से हो गया, मैं सरयू के तीर पर खेलता था बचपन में, कई वस्तुएं मैंने सरयू के जल में डाल दी पर कभी तो मैंने नहीं देखा कि कोई चीज तैरती रही हो, वे सारी की सारी चीजें डूब गईं, तो क्या इन कुछ वर्षों में जो मैं बड़ा हुआ तो मुझमें कोई महत्ता आ गई कि मैं फेंक दूं तो वह वस्तु डूबे नहीं और तैरने लगे, यह तो मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव किया नहीं। प्रभु को ऐसा लगा कि जरा जाकर के मैं भी एक पत्थर समुद्र के जल में डाल करके देखूं शायद कोई नया चमत्कार मेरे जीवन में पैदा हो गया हो। पर तुरंत दूसरे क्षण उनके मन में विचार आया कि यदि मैं सबके सामने यह प्रयोग करूंगा और कहीं पत्थर डूब गया बड़ी फद होगी, हंसेंगे लोग, कहेंगे कि राम का नाम लेकर के पत्थर तैरते हैं और जब राम स्वयं डालने जाते हैं तो पत्थर डूबते हैं, अच्छा यह प्रयोग किसी एकांत में किया जाए। प्रभु एकांत की खोज करने लगे, धीरे धीरे वे मानो सेना के बीच में से पीछे की ओर जाते हैं और जब इधर उधर देखा उन्होंने सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और देखा कि कोई उनकी ओर देख नहीं रहा है, वे गहन वन में निकल गए और वहां से सीधे चले गए ऊपर की ओर चले गए और बहुत दूर जाने के बाद फिर सागर के तट की ओर आते हैं। बीच बीच में वे लौट करके देख लेते हैं कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है, नहीं देखा। वे सागर के तट पर आए, कुछ दिखाई नहीं देता, सेतुबंध वहां से दूर है। तब उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिया और लेकर के वे सागर के जल में फेंकेंगे। एक बार फिर चारों तरफ देख लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, नहीं देख रहा है। और उन्होंने सागर के जल में फेंक दिया। बड़े दुख के साथ देखा कि वह पत्थर डूब गया। और तब वे फिर से देखते हैं, किसी ने देखा तो नहीं। जब वे लौट करके देखते हैं, हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। कहा, हनुमान तुम यहां पर? कहा, प्रभु तुमने यह देख लिया? कहा, हां मैंने देख लिया, पर तुम मेरे पीछे पीछे कब आए? मैंने तो बारंबार फिर फिर करके देखा। कहा, प्रभु आप जिस समय वहीं पर धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे, मुझे ऐसा लगा था कि आप कोई लीला करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आपने बारंबार इधर उधर देखा और इधर आप आने लगे। मैंने सोचा कि आप किसी को साथ लेना नहीं चाहते, पर प्रभु इस वन में कई प्रकार के पशु हैं, राक्षस हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साथ बना रहूं, पर इस प्रकार की आप देख न पाए। मैं समझ गया कि आप कोई कौतुक करना चाहते हैं, इसीलिए मैं अपने को छिपाता आ रहा था। आप लौट करके देखते थे तो मैं दिखाई नहीं देता था। तो हनुमान तुमने यह देख लिया? मैंने पत्थर डाला और वह डूब गया। हाँ प्रभु मैंने यह देख लिया। अच्छा हनुमान यह तो बताओ कि देखो ये बंदर और भालू मेरा नाम ले ले करके पत्थर डालते हैं और पत्थर तैर रहे हैं, और मैंने पत्थर डाला और वह पत्थर डूब गया, यह कैसी विचित्र बात है। हनुमान जी हाथ जोड़ करके गदगद स्वर में कहते हैं, प्रभु वह दुर्भागा कितना दुर्भागा है जिसको आप स्वयं अपने पास से दूर फेंक दें। आपके पास पहुंच चुका पर आपने उसे दूर फेंक दिया, वह तो डूबने ही वाला है, वह क्या कभी तैर सकता है। यह हनुमान जी का उत्तर कि जो प्रभु के पास पहुंच गया अपने किसी भाग्य के पुण्य के उदय से, और प्रभु जिसे स्वयं होकर के अपने से दूर फेंक दें, वह तो अत्यंत दुर्भागा है, वह डूबने ही वाला है। तो यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। पर यह जो कहा जा रहा था कि नाम का प्रभाव क्या है, तुलसी कहते हैं कि नाम का प्रभाव, अरे वह तो ब्रह्म से बढ़कर के है, वह तो राम से बढ़कर के है। तो यह नाम का प्रभाव हमारे समक्ष रखते हैं, पर जैसे श्री राम दिखाई देते हैं, वह जो दिखाई दे रहे हैं मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं, कितने लोगों को उनके संबंध में शंका हो गई, ऋषियों को शंका हो गई, मुनियों को शंका हो गई कि क्या यही ब्रह्म है, ब्रह्म क्या इसी प्रकार रोता है। श्री रामकृष्ण कहते थे ना, पंचभूतेर फांदे ब्रह्म पड़े कांदे, कि पंचभूतों के फंदे में जिस समय ब्रह्म पड़ता है तो वह भी रोने लगता है, उसे तो रोना ही पड़ता। तो यहां पर भी ब्रह्म रोते हैं, अरे ये तो मनुष्य है, मनुष्य के समान रो रहे हैं, यह भाव मन के भीतर में उठता है। ऐसे ही प्रसंगों को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस सरोवर की रचना की है और वहां पर घाट बना, और इस घाट में एक वक्ता है, श्रोता है। श्रोता के मन में यही संशय है कि क्या राम ब्रह्म है? वे तो मनुष्य के समान क्रियाकलाप करते हैं, उनमें कौन सी ब्रह्मता दिखाई देती है? तो जो वक्ता है उस श्रोता के संशय को दूर कर रहा है। अब कर्म के घाट पर देखें, वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता के रूप में बैठे हैं, भरद्वाज श्रोता हैं। जब हम देखें भक्ति के घाट को तो वहां पर काक भुसुंडी जी वक्ता हैं, श्रोता के रूप में गुरु जी हैं। और जब हम ज्ञान का घाट देखते हैं तो वहां पर बैठे हुए हैं वक्ता के रूप में साक्षात शंकर जी, और श्रोता के रूप में पार्वती जी बैठी हैं। यह बड़ा सुंदर चित्रण किया, यह ताना बाना उन्होंने बड़ा सुंदर बुना गोस्वामी जी ने। अब प्रत्येक घाट का थोड़ा सा वर्णन करें। अब भरद्वाज हैं, याज्ञवल्क्य के पास आते हैं, उनके मन में शंका है। याज्ञवल्क्य श्री राम को ब्रह्म कहते हैं, साक्षात परात्पर ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, पर भरद्वाज ऋषि के मन में शंका है कि कैसे, यह तो मनुष्य के चरित्र खेल रहा है, क्या यह ब्रह्म हो सकता है? प्रश्न उन्होंने कहा, वे गए याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न किया,
राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहीं बुझाई कृपा निधि मोही।
ये राम कौन है प्रभु, जरा मुझे बताइए, समझा करके कहिए कि आप किस राम के संबंध में ब्रह्मत्व की बात करते हैं। मैं एक राम को जानता हूं। किसको जानते हो?
एक राम अवधेश कुमारा किन कर चरित विदित संसारा।
वे राम जो थे उनकी नारी का पत्नी का अपहरण कर लिया गया तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जाकर के रावण को युद्ध में हरा दिया और अपनी पत्नी को छुड़ा लिया। अब भरद्वाज ऋषि का मंतव्य यह है कि इस राम में कौन सी विशेषता है, जैसे एक व्यक्ति की पत्नी का अपहरण कोई कर ले तो वह दुखी होगा, उसे बड़ा गुस्सा आएगा, तो वह देखता रहेगा, खोजता रहेगा कि किस व्यक्ति ने उसकी पत्नी को चुराया है, और यदि वह चुराने वाला व्यक्ति मिल जाए तब तो वह उसे मार ही डालने की चेष्टा करेगा। यदि एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार का करता है तो इसमें राम ब्रह्म हो गए, राम की ब्रह्मता इससे साधित हो गई। यह कैसी विचित्र बात है, यह संशय भरद्वाज के मन में इस प्रकार का संशय। वे तो कहते हैं कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, आपसे मैं पूछता हूं कि वे राम कौन है, आप समझा करके मुझसे कहिए। जिस राम को मैं जानता हूं अवधेश कुमार के रूप में, उस राम में मैं किसी प्रकार की विशेषता नहीं देखता कि आप उस राम को ब्रह्म कहें, यह मुझे ठीक नहीं लगता। तो उस कर्म के घाट पर भरद्वाज के संशय का निरसन याज्ञवल्क ऋषि कर रहे हैं। यह बड़ा सुंदर घाट, और वे समझा करके कहते हैं कि राम ब्रह्म कैसे हैं। मानो तुलसी प्रत्येक के हृदय में जो संशय है भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से, कर्म की दृष्टि से संशय भरद्वाज के मन में, भक्ति की दृष्टि से संशय गुरु जी के मन में, ज्ञान की दृष्टि से संशय पार्वती जी के मन में, यह सारे संशय वे दूर करते हैं और यह प्रतिष्ठापित करते हैं कि श्री राम साक्षात ब्रह्म है। अब दूसरे घाट पर अगर अपन चले, भक्ति के घाट पर, भक्ति के घाट पर जाकर के देखें, मां काकभूषुंड जी वक्ता के रूप में हैं और गुरु जी आए हैं श्रोता के रूप में। उनके मन में भयानक संशय आ गया है। कैसे संशय आ गया? श्री राम क्या ब्रह्म हो सकते हैं? क्या वही ब्रह्म है जिनका पाश काटने के लिए मुझे जाना पड़ता? या गरु जी के मन में शंका है। जब राम रावण युद्ध चल रहा है लंका में, आप पढ़ते हैं अंत में, उस मेघनाद ने व्याल पाश फेंका, नाग पाश फेंका, और प्रभु तो कौतुकी है, लीलामय है, वे मेघनाद के द्वारा फेंके गए नाग पाश में बंद जाते हैं। व्याल पाश बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। क्या बड़ा सुंदर संकेत दिया, जो स्वबश है अपने वश में रहने वाले हैं वे व्याल पाश में बंद जाते हैं। जो अपने वश में रहेगा, जो व्याल पाश में यदि बंद जाए तो अपनी इच्छा से ही बंद रहा है, कोई कौतुक करने के लिए बंद रहा है, वे साक्षात अनंत हैं, एक हैं, अभिकारी हैं, परंतु वे क्या करते हैं? व्याल पाश बस भय खरारी, खर के शत्रु अपने को उस व्याल पाश में बंधवा लेते हैं, और जब बंधन में पड़ गए हाहाकार मच गया, वानर हाहाकार करने लगे, ऊपर से देवता हाहाकार करने लगे। ये देवता तो तमाशबीन होते हैं ना, जहां कहीं पर भी ऐसा युद्ध हो वे तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। इनकी चर्चा कल करेंगे। गोस्वामी जी ने इन देवताओं की बड़ी खबर ली है, ये देवता कैसे हैं। तो ये तो ऊपर में आ गए हैं अपने विमानों में बैठे हुए अपनी पत्नियों के साथ, और हाहाकार होता है तब, और तब जिस समय व्याल पाश के द्वारा प्रभु बंध गए, देव ऋषि नारद क्या करते हैं?
यहां देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपद सो आयो।
जिस समय देखा प्रभु बंध गए हैं व्याल पाश में, देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा, कहा जाओ प्रभु व्याल पाश में बंध गए हैं, तुम जाकर के सब सांपों को खा लो और प्रभु को पाश से मुक्त कर दो। आते हैं खगपति।
खगपति सब धरी खाई माया नाग बरूथ, माया बिगत भये सब हर से बान रजूथ।
आ गए गुरु जी, उन्होंने देखा कि प्रभु बंधन में पड़े हुए हैं, सांपों के बंधन में, एक एक करके वे सांपों का भक्षण करते हैं, और इस प्रकार बंधन से मुक्त प्रभु हो गए। सभी मानव सेना हर्षित होती है, देवता हर्षित होते हैं, और प्रभु को बंधन मुक्त करके गरुड़ जी तो चले जाते हैं, पर वे स्वयं एक बंधन में फंस करके जाते हैं। वह बंधन क्या था? वही मोह का बंधन, कि अरे क्या यही श्री राम ब्रह्म है जो संसार के बंधन का नाश करते हैं, जो स्वयं अपने बंधन को काट नहीं सकते, वे दूसरे का बंधन क्या काटेंगे। बस यही मोह का बंधन गरुड़ जी को लग गया और इस मोह के बंधन में तड़पते हुए गरुड़ जी कहां नहीं जाते हैं। आप पढ़ते हैं रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा है कि कैसे कहां कहां गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, यहां गए वहां गए, अंत में वे काकभूषण जी के पास आते हैं। और यहां पर जब आते हैं संशय लेकर के, क्या वही श्री राम जो मेघनाथ के जाल पाश में बंध सकते हैं, क्या वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा हैं, दिखाते हैं काकभूषण जी और उनके संशय का निरसन करते हैं और यह प्रमाणित कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि वही राम साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो यहां पर भी निरसन हुआ। अब तीसरे घाट की ओर चले, ज्ञान का घाट। यहां पर भगवान शंकर बैठे हैं, पार्वती जी बैठी हैं। पार्वती जी के मन में शंका है श्री राम के ब्रह्मत्व को लेकर के, और यह शंका आज की नहीं है। वे जब सती थी पूर्व जन्म में, दक्ष की कन्या थी, तब से उनके मन में वह संशय घर कर गया था और उस संशय के कारण ही उन्हें अपनी सती देह को विसर्जित करना पड़ा। फिर वे पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, भगवान शंकर को प्राप्त करती हैं। यह कथा आप सभी को मालूम है विस्तार से, हम उस कथा में नहीं जाएंगे, पर हम देखेंगे कि पार्वती जी जिस समय सती थी उस समय उनके मन में जो संशय था वही संशय चला आया। पार्वती जी जब वे बन गई पार्वती के रूप में, फिर से वे आती हैं, जन्म ग्रहण करती हैं, तो श्री राम के ब्रह्मत्व के संबंध में जो संशय है वह संशय अभी भी नहीं मिटा है। जब वे सती थी तब क्या हुआ था, वही संशय। तो संशय कैसे प्रकट होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसंग उपस्थित करते हैं। एक बार अगस्त ऋषि ने राम कथा का आयोजन किया दंडकारण्य में। दंडकारण्य का यही क्षेत्र, कितना नाम दंडकारण्य का आता है। तो वे लिखते हैं कि दंडकारण्य में अगस्त ऋषि ने राम कथा का आयोजन किया, उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया। अब हमको इसमें नहीं जाना है कि वे देवता कहां कहां थे, स्वर्ग लोक में उन्होंने पाती कैसे भेजी होगी, चिट्ठी वहां पर जाने के लिए कौन सा डाकिया रहा होगा, यह तो आप भाव की दृष्टि से देखिए। सबको उन्होंने निमंत्रित किया जितने भी थे। भगवान शंकर के पास भी पाती पहुंची निमंत्रण की, तो भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि भाई देखो, यह तो आया हुआ है निमंत्रण, अगस्त ऋषि राम कथा का आयोजन कर रहे हैं, मुझे राम कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, मैं तो जाना चाहता हूं, कहो तुम्हारी क्या राय है। तो सती जी कहती है कि भगवान आप जब जा रहे हैं तब मैं भी आपके साथ ही साथ चलूंगी, मैं यहां पर अकेली कहां रहूंगी, मैं आपके पीछे पीछे ही चलूंगी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु कुंभज ऋषि के पास गए, कुंभज माने अगस्त्य, कुंभ से जिनका जन्म हुआ हो, घड़े से जिनका जन्म हुआ हो, ऐसे अगस्त ऋषि के पास, कुंभज ऋषि के पास भगवान शंकर गए निमंत्रण पाकर के श्री राम की कथा सुनने के लिए। तो सती जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संग सती, और उनके लिए क्या विशेषण लगाते हैं, संग सती जग जननी भवानी। सती जी जा रही, तो कौन जा रही, जगत जननी भवानी, भवानी जा रही हैं, जगत जननी जा रही हैं शंकर जी के साथ। अब सती जी के साथ एक समस्या है, वह समस्या क्या है, वे दक्ष की तो कन्या है पर पत्नी है भगवान शंकर की। दक्ष किसे कहते हैं, चतुर को, जो चतुर हो निपुण हो उसे कहते हैं दक्ष। तो ये दक्ष की कन्या है और शंकर जी की पत्नी, और भगवान शंकर क्या है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, वे विश्वास स्वरूप हैं। तो सती जी के साथ समस्या यह है कि वे दक्ष की, चतुर की तो कन्या है और विश्वास की पत्नी है, तो दक्ष की कन्या होने के नाते उनमें बुद्धि वृत्ति बहुत सजग है, उनकी बुद्धि वृत्ति बड़ी सूक्ष्म है, वह प्रबल है, उनमें संशय भी उत्पन्न होता है। तो दक्ष की कन्या के नाते उनमें संशय उत्पन्न होता है, या बुद्धि वृत्ति है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। तो कहा गया कि जब हमारी बुद्धि वृत्ति विश्वास के पीछे पीछे चले तब तो वह जिज्ञासा है, परंतु जब वह बुद्धि वृत्ति चतुराई के पीछे चले तब तो वह दक्ष की कन्या है। यह मानो गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि यह बुद्धि वृत्ति है, और उसका विवाह किससे हुआ? विश्वास से हुआ। तो विश्वास के पीछे पीछे हमारी बुद्धिवृत्ति चलेगी, तब तो उसे हम जिज्ञासा कहेंगे, अन्यथा वह तो संशय ही है, बुद्धि में तो संशय ही उपस्थित होता है। और जो चतुर व्यक्ति होता है उसमें बहुत अधिक संशय उपस्थित होता है, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि मैं ही सब कुछ करने में समर्थ हूं, दूसरे कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसा जो कुशल व्यक्ति अपने को मानने वाला, बुद्धि से चतुर मानने वाला, उसके जीवन में संशय बहुत होता है, दूसरों पर वह सहसा विश्वास नहीं कर पाता है। तो सती जी के साथ समस्या यह थी कि जिस समय वे अपने को भगवान शंकर की पत्नी के रूप में सोचती थी, तब तो वे जिज्ञासा बन जाती थी। विश्वास के पीछे जब चलती थी तब तो वह जिज्ञासा का रूप होता था, और जिज्ञासा जीवन में चाहिए, किसी तत्व की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा आवश्यक है, उसको हम चाहते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। पर जब सती जी के मन में ऐसा लगता था कि मैं दक्ष की कन्या हूं, तब उनमें संशय बहुत अधिक आ जाता था, फिर वे कहीं विश्वास नहीं कर पाती थी, अपने विवेक के द्वारा वह ठीक कार्य नहीं कर पाती थी। तो यह द्वंद्व सती जी के जीवन में था, यह गोस्वामी जी चित्रित करते हैं। कभी उनको लगता मैं दक्ष की कन्या हूं, तब संशय से परेशान होती, जब लगता कि मैं विश्वास की पत्नी हूं, तब वे जिज्ञासा के रूप में अपने जीवन में एक प्रकार की धन्यता का अनुभव करती। अब ये जा रही हैं भगवान शंकर के साथ, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संग सती जगत जननी भवानी, विश्वास के पीछे पीछे चली जा रही हैं, इसलिए ये जगत जननी है, ये भवानी है। और जब दोनों पहुंचे ऋषि के आश्रम में, ऋषि खड़े हो गए, वे राम कथा कह रहे थे। व्यासपीठ से देखा कि आए हुए हैं साक्षात भगवान शंकर, और उनके साथ में उनकी शक्ति सती जी, एकदम खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर के पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जान करके भगवान शंकर का पूजन करते हैं।
संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
अब जब पूजा हुई, उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की, सती जी की पूजा की। अब भगवान शंकर को बड़ा संकोच हुआ पूजा लेने में। संकोच इसलिए हुआ कि वे तो श्रोता बनकर के वहां पर गए थे, तो उनके मन में यह तर्क चल रहा है, उचित तो यह था, मैं तो श्रोता बनकर के यहां आया हूं, मैं तो वक्ता की पूजा करता, क्योंकि मैं वक्ता से कुछ ग्रहण करने के लिए आया हूं। यह तो ऋषि जी आपने बड़ा उल्टा कर दिया, आप मेरी पूजा कर रहे हैं। पर अगस्त ऋषि अपनी पूजा करने देंगे भगवान शंकर के द्वारा? यह कभी संभव नहीं था। अगस्त ऋषि ने अत्यंत प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की, पर भगवान शंकर को उस पूजा को ग्रहण करने में संकोच हुआ। उन्हें ऐसा लगा यह ठीक नहीं हुआ, मैं तो यहां पर सुनने के लिए श्रोता बनकर के आया था, और यहां मैं पूजा ग्रहण कर रहा हूं वक्ता के द्वारा, यह बात उन्हें खटकती। पर सती जी के मन में एक दूसरे भाव का उदय होता है। वह क्या भाव, उनके मन में क्या विचार उठता है? उनके मन में ऐसा उठता है कि यदि मैं श्रेष्ठ न होती तो अगस्त ऋषि ने मेरी पूजा क्यों की होती? अगस्त ऋषि ने मेरी पूजा की है, इसका मतलब यह है कि मैं ऊंची हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं उनसे बढ़कर के हूं। इसीलिए अगस्त ऋषि ने, जब वे इतने ज्ञानी हैं, यह जान करके समझ करके मेरी पूजा की, यह विचार सती जी के मन में उठता है। अब जब यह विचार सती जी के मन में उठा तो उसका फल क्या हुआ? बड़ा सुंदर संकेत गोस्वामी जी देते हैं। अब राम की कथा मुनि कह रहे हैं।
राम कथा मुनि बरन जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
भगवान शंकर को बड़ा आनंद आता है, भगवान शंकर अत्यंत आनंद विभोर होकर के राम कथा सुनते हैं। पर संकेत यह है कि वहां पर सती जी दिखाई नहीं देती, उस सभा में, श्रोता वर्ग में सुनने वाली वे हैं नहीं। यह संकेत गोस्वामी जी देते हैं, क्यों? सती जी के मन में आया कि जब मैं वक्ता से बढ़कर के हूं, क्योंकि वक्ता ने मेरी पूजा की, तो मैं उनसे श्रेष्ठ होकर के निकृष्ट की कथा क्यों सुनूं? यह एक तर्क आया, और यह तर्क जब आया तो उन्होंने तो कथा सुनी नहीं, भगवान शंकर ने कथा सुनी। यह होता है ना, यदि कोई वक्ता व्यासपीठ पर बैठा हो और श्रोता जरा अधिक बुद्धिमान अपने को समझे, तो फिर कहेगा अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये तो मैं जानता हूं। वो कथा नहीं सुनेगा, वह तो कथा एक बार सुनबे ही नहीं करेगा, कहेगा चलो, अरे यहाँ क्या, अच्छा वो आत्मानंद कथा कर, चलो चलो चले, कोई आज नहीं, ठीक है उनकी कथा तो सुनते ही रहते हैं। तो मतलब यह है कि अगर ऐसा भाव आ जाए तो कथा में कोई रस ही नहीं आए कि भाई कथा कही जा रही है और हर समय मैं बुद्धि का डंडा लेकर के माप रहा हूं कि वह कैसी कथा कहता है, ठीक कथा कहता है तो अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ी ठीक है कथा, रस भरी है, बने व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, कुछ शब्द अच्छे नहीं बोलता, वो श और स और स में सब गोलमाल कर देता है। माने अब इसमें कथा सुनने आए हैं न, वो सड़क की स, साला की स, षटकोण की स, ये सब तीनों से एक समान ही बोलता है।